तर्क भाषा कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। एक पाठ आपको हमने भेजा हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। मैंने बोला था कि ग्रुप में आपको ये लिखना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन आप में से किसी ने भी इस तरह का कुछ मैसेज नहीं किया ग्रुप में, जो कि गलत बात है। वो आपको लिखना चाहिए, समझ में आया नहीं समझ में आया। आज हम फिर से शुरुआत करते हैं दूसरा पाठ तर्क भाषा का। पहले पाठ में केवल भूमिका में हमने कुछ बताया था आपको, जिसमें से कुछ चीज़ें दो नंबर के प्रश्न में भी पूछी जाती हैं। आज मंगलाचरण से ही शुरुआत होगी। हमने बताया था आपको कि मंगलाचरण में के दो प्रयोजन होते हैं, एक तो विघ्न का शमन हो और ग्रंथ की समाप्ति हो जाए, और दूसरा ये है कि पढ़ने वाले को ये पता चले कि हमें इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ताकि जो है ना वो जब समझेगा कि इसके पढ़ने से मुझे लाभ होने हैं तो फिर उसको पढ़ने में प्रवृत्त होगा। तो यहाँ का जो मंगलाचरण है, इसमें किसी देवता सबका नमस्कार नहीं किया गया है। यहाँ पर इस पुस्तक में क्या बातें बताई गई हैं उसको बड़े ही संक्षेप में बताया गया है और इसका प्रयोजन बताया गया है। एक शब्द है अनुबंध चतुष्टय। मैंने कल कहा था आपसे कि कॉपी कलम भी आपको रखना है पढ़ते समय में, कुछ नोट्स जो मैं कराऊंगा उसको लिखना भी है। तो मैं आज आप लोगों ने रखा होगा कॉपी कलम सामने में, तो एक शब्द है उसको आप लिखिए, अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, आप जानते हैं चतुष्टय माने चार होता है, और अनुबंध का मतलब होता है कि वो बातें जिन बातों से व्यक्ति किसी पुस्तक को पढ़ने में प्रवृत्त होता है, तो वो कौन सी चार बातें हैं अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत, उसको भी आपको नोट करना है। आपने लिख लिया होगा अनुबंध चतुष्टय माने चार प्रकार के अनुबंध, तो वो चार प्रकार के अनुबंध कौन से हैं वो लिखिए। पहला है विषय, दूसरा है अधिकारी, पहला है विषय, दूसरा है अधिकारी, तीसरा है प्रयोजन और चौथा है संबंध। आपने क्या क्या लिखा? पहला लिखा होगा विषय, दूसरा लिखा होगा अधिकारी, तीसरा लिखा होगा प्रयोजन और चौथा लिखा होगा आपने संबंध। तो यह जो मंगलाचरण है इसमें इन चारों बातों को बताया गया है कि इसका विषय क्या है। तो विषय में जो है इसका मुख्य विषय जो है वो है 16 जो पदार्थ हैं, जो पहले सूत्र में प्रमाण प्रमेय करके जो बताया गया है वो आगे आज आने ही वाला होगा। तो 16 पदार्थ जो हैं वो इसके विषय हैं, ठीक है। दूसरा हो गया अधिकारी। तो अधिकारी इस कौन होगा? जो ग्रहण और धारण करने में समर्थ होगा। इसका मतलब समझिए, ग्रहण का मतलब होता है कैच करना, माने कोई बात हम आपको बता रहे हैं उस बात को आप जो है ना स्वीकार करेंगे समझ लेंगे, ये हुआ ग्रहण करना। और धारण करना होता है कि उसको देर तक आप स्मृति पटल पर रखेंगे, याद करके रखेंगे, वो हुआ धारण करना। तो ग्रहण करना माने किसी भी बात को समझ लेना, धारण करना माने उसको देर तक उसको दिमाग में बिठा करके रखना। तो जो ग्रहण और धारण करने में समर्थ है वही जो है इसका अधिकारी है पढ़ने का, इस ग्रंथ का। तो विषय में हो गया 16 पदार्थ का प्रतिपादन, और अधिकारी हो गया ग्रहण और धारण करने में जो सामर्थ्यवान है, जो समर्थ है वो, तीसरा है प्रयोजन। तो इसका मुख्य प्रयोजन जो है वह है मोक्ष, मोक्ष के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि मोक्ष मिल जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने सुना होगा। तो मोक्ष मिलने से क्या होता है कि दुख की निवृत्ति हो जाती, माने दुख नहीं, दुख का अनुभव उसके बाद नहीं होता है, और सामान्य भाषा में उसको कहते हैं कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, उसको हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन हम लोग न्याय शास्त्र अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो न्याय शास्त्र के अनुसार जो है ना, दुख का नहीं होना ही जो है, दुख से छुटकारा मिलना जो है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो मोक्ष इसका प्रयोजन है। और चौथा जो है अनुबंध चतुष्टय का, वह है संबंध। तो यहाँ पर कौन सा संबंध होगा? अच्छा, संबंध जो है ना हमेशा दो में होता है, अकेले में संबंध नहीं हो सकता, तो दो में संबंध होता है। तो यहाँ पर वो दो कौन है? एक तो विषय है और दूसरा यह ग्रंथ है। तो विषय और ग्रंथ के बीच में कौन सा संबंध है? वह है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। इसको आप नोट कर लीजिए, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, लिख लिया होगा आपने, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। आप ये जान लीजिए कि प्रतिपाद्य होती है प्रतिपाद्य होता है विषय, माने वो जो 16 पदार्थ है वह प्रतिपाद्य है, और प्रतिपादक है यह ग्रंथ आपका। तो विषय और ग्रंथ के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। फिर से सुन लीजिए, प्रतिपाद्य है विषय और प्रतिपादक है ग्रंथ, दोनों के बीच के संबंध का नाम है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। तो किसी भी पुस्तक की शुरुआत में जो मंगलाचरण किया जाता है, उसमें ये अनुबंध चतुष्टय को बताया जाता है। कहीं पर स्पष्ट रूप से बताया जाता है और कहीं पर जो है ना थोड़ा सा कम क्लियर रहता है, लेकिन बताया जरूर जाता है। तो तर्क भाषा का जो मंगलाचरण है, इसमें यह अनुबंध चतुष्टय बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने जो लिखा होगा उसको मिला लीजिए कि अनुबंध चतुष्टय चार होते हैं। एक हो गया विषय, दूसरा हो गया अधिकारी, तीसरा हो गया प्रयोजन, चौथा हो गया संबंध। विषय है 16 प्रकार का जो पदार्थ है वह, अधिकारी हो गया जो ग्रहण और धारण करने में समर्थ है, प्रयोजन हो गया मोक्ष, और संबंध हो गया प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। अब हम मंगलाचरण का एक बार उच्चारण करते हैं, कल भी हमने किया था। बालोपी यो न्याय नये प्रवेश मल्पेन वांछत्यलसह श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा। फिर से बोलता हूँ इसको, संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। अब इस मंगलाचरण में एक एक शब्द का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। पहला शब्द है बालहा, बालहा माने तो ऐसे बालक होता है लड़का, लेकिन यहाँ जो बालक है ना, उसका अर्थ वो बच्चा नहीं करेंगे, इसका अर्थ करेंगे वही जो मैंने बताया अधिकारी के लक्षण में, कि जो ग्रहण और धारण विषय को ग्रहण कर सकता है, विषय को धारण कर सकता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसी का को यहाँ पर बाल शब्द से बोला गया है। बालक के बाद है अपि, अपि माने जानते हैं भी, यह, यह मतलब जो, न्याय नये, मैंने बताया था कि 12 दर्शन है, उसमें 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है, और 6 जो आस्तिक दर्शन है उसमें से एक न्याय दर्शन है। तो न्याय दर्शन को ही न्याय नय कहा जाता है, न्याय का तो नाम ही है दर्शन का, और नय का मतलब यहाँ पर दर्शन समझ लीजिए, ऐसे नय मतलब नीति भी होती है, लेकिन यहाँ पर नय का अर्थ दर्शन है। तो न्याय नय मतलब न्याय दर्शन में। प्रवेशम, प्रवेश जानते हैं कि प्रवेश। फिर अल्पे ना, अल्पेन का अर्थ थोड़ा सा, थोड़े में या थोड़ा। वांछति, वांछति माने इच्छति, चाहता है। अलसह, अलसह जिसको आप आलसी बोलते हो ना, उसी आलसी को अलसह संस्कृत में बोला गया है, कहा गया है। श्रुते ना, श्रुते ना मतलब श्रवण करने से, सुनने से। फिर है संक्षिप्त, संक्षिप्त माने थोड़े में। युक्ति, युक्ति कहते हैं उसको जिसके द्वारा किसी भी बात को जो है ना प्रमाणित किया जाता है कि ये सही है कि गलत है। तो जिस के द्वारा सही और गलत प्रमाणित किया जाए उसको हम युक्ति कहते हैं। तो संक्षिप्त युक्ति अन्वित, अन्वित माने युक्त होता है, तो संक्षिप्त युक्ति से अन्वित, अन्वित माने युक्त। तर्क भाषा, तर्क भाषा इस पुस्तक का ही नाम है। प्रकाश्यते माने प्रकाशित की जाती है, लिखी जाती है, बनाई जाती है, ये भी अर्थ कर सकते हैं। तस्य कृते, तस्य कृते माने कस्य कृते, तो बालस्य कृते, वह जो बालक है जो विषय को ग्रहण और धारण करने में समर्थ है उसके लिए। तस्य कृते माने उसके लिए। मया, मया माने मेरे द्वारा। ऐसा, ऐसा माने यह। अब यहाँ पर एक एक शब्द का मैंने अर्थ बता दिया, अब पूरे को अगर हम श्लोक का अर्थ अगर हम करें तो ये होगा कि जो आलसी बालक थोड़े से श्रवण करने से न्याय सिद्धांत में, न्याय दर्शन में प्रवेश करना चाहता है, ऐसे बालक के लिए संक्षिप्त युक्तियों से युक्त इस तर्क भाषा को मैं केशव मिश्र प्रकाशित कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कई बातें, एक तो पुस्तक का नाम आ गया कि कौन सी पुस्तक मैं लिख रहा हूँ, तो तर्क भाषा पुस्तक लिख रहा हूँ। इस तर्क भाषा में क्या है, वो बात आई कि संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा। इस तर्क भाषा में संक्षेप में युक्ति बताई गई है, युक्ति से अन्वित होना माने युक्ति से युक्त होना। तो संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा का मतलब हो गया कि जिस तर्क भाषा में संक्षेप से युक्तियों को बताया गया है, ऐसी तर्क भाषा। बालक का अर्थ आप समझ ही गए हैं, न्याय नए समझ ही गए, नए का अर्थ आप दर्शन भी कर सकते हैं, सिद्धांत भी कर सकते हैं। तो न्याय नए मतलब न्याय दर्शन में अथवा न्याय के सिद्धांत में। तो जो बालक थोड़ी सी मेहनत करके न्याय के सिद्धांतों को समझना चाहता है, न्याय दर्शन को पढ़ना चाहता है, ऐसे बालक के लिए मैं इस तर्क भाषा की रचना कर रहा हूँ, ये इस श्लोक का अर्थ है। इसमें मया जो है ना, मया का अर्थ करेंगे केशव मिश्रे ना, क्योंकि आप जानते हैं इसके रचयिता केशव मिश्र जी हैं। तो केशव मिश्र के द्वारा इस तर्क भाषा की रचना की जा रही है। अब मैं कुछ प्रश्न करता हूँ, अब उसका उत्तर भी करता हूँ। यह रचना किसके लिए की जा रही है, तो बालक के लिए, बाल के लिए। किस टाइप के बालक के लिए, तो जो अल्पेन बांछति, जो थोड़ी सी मेहनत करके जो है, जो चाहता है, क्या चाहता है, तो न्याय नये प्रवेशम माने न्याय दर्शन में प्रवेश चाहता है। वह बच्चा कैसा है, तो अलसहा, वह आलसी है, वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। फिर ये जो तर्क भाषा है, इसमें क्या है, तो कहा संक्षिप्त युक्ति है इसमें, इस तर्क भाषा के अंतर्गत माने संक्षेप में युक्तियों को बताया गया है। युक्ति का फिर से मैं मतलब बता देता हूँ कि जिसके द्वारा किसी को सही या गलत सिखाया जाता है उसको हम युक्ति कहते हैं। तो इस तरह से आपने एक एक शब्द का अर्थ भी समझा और पूरे श्लोक का अर्थ भी समझा। फिर से एक बार जो है मैं श्लोक का अर्थ जो है आपको समझाता हूँ। तो पूरे श्लोक का अर्थ बताता हूँ कि जो आलसी बालक थोड़ी सी मेहनत करके या थोड़े से श्रवण करने से, थोड़ी सी पढ़ाई करने से न्याय सिद्धांत में प्रवेश पाना चाहता है, ऐसे बालक के लिए संक्षिप्त युक्तियों से युक्त इस तर्क भाषा की मैं रचना करता हूँ। मैं समझता हूँ कि श्लोक का भाव क्लियर हो गया होगा। और अब आप इसमें जो तर्क भाषा शब्द आया है इसको थोड़ा सा हमें समझना है। यहाँ तर्क भाषा में जो भाषा है ना, ये वो लैंग्वेज वाली भाषा नहीं है। यहाँ पर भाषा का अर्थ है कथनम माने कहना या प्रतिपादनम कह लीजिए। और तर्क भाषा में जो तर्क शब्द आया है, उस तर्क, वह तर्क क्या है, तो जो आज हम लोग समझते हैं कि थोड़ा तर्क करो, वो वाला तर्क यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तर्क का अर्थ होता है विचार। तो इसको थोड़ा संस्कृत में आपको लिखना होगा, धीरे से मैं बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अविज्ञात तत्वे, अविज्ञात तत्वे अर्थे, अविज्ञात तत्वे अर्थे कारणोपपत्तितः, 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 कारणोपि कारणोपपत्तितः तत्वज्ञानार्थम्, कारणोपपत्तितः तत्वज्ञानार्थम् ऊहः तर्कः, ऊहः तर्कः। एक बार फिर से बोलता हूँ, अविज्ञात तत्वे अर्थे कारणोपपत्तितः तत्वज्ञानार्थम् ऊहः तर्कः। आपने लिख लिया होगा, एक और लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसको। तर्क्यन्ते, तर्क्यन्ते बराबर प्रतिपाद्यन्ते, तर्क्यन्ते बराबर प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः बराबर प्रमाणादयः, बराबर प्रमाणादयः षोडश पदार्थाः, प्रमाणादयः षोडश पदार्थाः ते, अति कामा दे करके पदार्थाः के बाद कामा दे दीजिए, ते भाष्यन्ते अनया, ते भाष्यन्ते अनया, ते भाष्यन्ते अनया इति तर्कभाषा, ते भाष्यन्ते अनया इति तर्कभाषा। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला मैं अगले ऑडियो में बताऊंगा आपको।